नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन ना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जॉन वॉन न्यूमैन की द कंप्यूटर एंड द ब्रेन, कंप्यूटर विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के बीच संबंध पर लिखी एक संक्षिप्त ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वैचारिक पुस्तक है। यह येल की सिलेमन मेमोरियल लेक्चर्स के लिए तैयार किए गए अधूरे व्याख्यान नोट से बनी थी। वॉन न्यूमैन ने इसे जीवन के अंतिम चरण में लिखा, इसलिए यह किसी पूर्ण न्यूरोसाइंस पाठ्यपुस्तक के बजाय एक असाधारण वैज्ञानिक मन की जांच पड़ताल के रूप में पढ़ी जाती है। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न सीधा है, मस्तिष्क सूचना को कैसे ग्रहण, रूपांतरित, संग्रहित और उपयोग करता है, और इस प्रक्रिया की तुलना मशीनों से किस सीमा तक की जा सकती है। लेखक न तो मस्तिष्क को साधारण कंप्यूटर घोषित करते हैं, न ही दोनों के अंतर को रहस्यमय बनाते हैं। वे डिजिटल गणना, एनालॉग प्रक्रियाओं, स्मृति, विश्वसनीयता और भाषा जैसे प्रश्नों के सहारे तुलना की सीमाएं तय करते हैं। आधुनिक शोध ने इसके अनेक वैज्ञानिक विवरणों को पीछे छोड़ दिया है, फिर भी इसकी उपयोगिता मूलभूत सोच में है। यह बताती है कि बुद्धि को समझने के लिए केवल तेज गणना नहीं, बल्कि त्रुटि, सांख्यिकीय व्यवहार और जैविक संगठन को भी समझना आवश्यक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कंप्यूटर और मस्तिष्क की तुलना को रूपक नहीं, कार्यात्मक प्रश्न बनाना। पुस्तक की आरंभिक उपलब्धि यह है कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर और मस्तिष्क की तुलना को सतही समानताओं तक सीमित नहीं रखते। दोनों में स्मृति होने या दोनों के सूचना संभालने जैसी सामान्य बातों से आगे बढ़कर वे पूछते हैं कि संकेत किस रूप में आते हैं, निर्णय कैसे बनते हैं और विश्वसनीय परिणाम कैसे निकलते हैं। उस समय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की संरचना स्वयं नहीं थी और वॉन न्यूमैन उसके निर्माण के प्रमुख वैचारिक वास्तुकारों में थे, इसलिए मशीन की कार्यपद्धति पर उनकी चर्चा अनुमान नहीं, प्रत्यक्ष तकनीकी समझ से निकलती है। दूसरी ओर, वे मस्तिष्क की जैविक वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, जहां कोशिकाएं, तंत्रिका संकेत और अत्यधिक समानांतर संगठन काम करते हैं। तुलना का उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि मनुष्य एक मशीन है, उद्देश्य यह पहचानना है कि किसी भी सूचना प्रसंस्करण प्रणाली को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे इनपुट को संकेत में बदलना, स्मृति तक पहुंचना, गलतियों के बावजूद उपयोगी निष्कर्ष देना और सीमित संसाधनों में प्रतिक्रिया करना। यह दृष्टि आज भी उपयोगी है, क्योंकि AI पर चर्चाएं अक्सर मानव जैसी क्षमता और मानव जैसी संरचना को एक मान लेती हैं। पुस्तक याद दिलाती है कि समान कार्य करने वाली दो प्रणालियां अपने भौतिक ढांचे, गति, कोडिंग और त्रुटि सहनशीलता में बहुत भिन्न हो सकती है। इसीलिए यह कंप्यूटेशनल रूपक को अधिक अनुशासित ढंग से इस्तेमाल करना सिखाती है। दूसरा, डिजिटल और एनालॉग प्रक्रियाओं का मिश्रण। वॉन न्यूमैन के विश्लेषण का एक प्रमुख पक्ष डिजिटल और एनालॉग गणना का अंतर है। डिजिटल व्यवस्था अलग अलग निश्चित अवस्थाओं पर निर्भर करती है। इसका लाभ यह है कि संकेतों में कुछ व्यवधान होने पर भी उचित सीमा के भीतर उन्हें पहचाना और पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके विपरीत, एनालॉग व्यवस्था में किसी मात्रा का निरंतर परिवर्तन सीधे किसी दूसरी मात्रा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह प्राकृतिक संकेतों और मापन के निकट लगती है, लेकिन शोर, घिसावट और छोटी त्रुटियों से प्रभावित हो सकती है। लेखक दिखाते हैं कि वास्तविक मशीनों और जैविक प्रणालियों को समझने के लिए इन दो श्रेणियों को कठोर विरोधी खानों में रखना पर्याप्त नहीं है। मस्तिष्क में तंत्रिका संकेतों की दहलीज, आवृत्ति, समय और कोशिकाओं की सामूहिक सक्रियता जैसे पहलू है, जिनका वर्णन केवल एक सरल डिजिटल रूपक से नहीं हो सकता। फिर भी मस्तिष्क पूर्णतः एनालॉग यंत्र भी नहीं है, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं के सक्रिय या निष्क्रिय होने जैसी अवस्थाएं अलगाव और निर्णय का तत्व लाती है। इस मिश्रित दृष्टि का महत्व यह है कि यह बुद्धि को केवल प्रतीकों पर नियम लागू करने वाली प्रक्रिया नहीं मानती। संवेदन, नियंत्रण, पैटर्न पहचान और याददाश्त में मात्रा, संभावना और समय भी भूमिका निभाते हैं। आधुनिक कंप्यूटिंग में डिजिटल हार्डवेयर, एनालॉग सेंसर और सांख्यिकीय मॉडल साथ काम करते हैं। पुस्तक इस संयुक्त सोच का प्रारंभिक दार्शनिक आधार प्रस्तुत करती है, भले इसके जैविक विवरण आज अधूरे माने जाएं। तीसरा, अविश्वसनीय घटकों से विश्वसनीय गणना की समस्या। मस्तिष्क और कंप्यूटर की तुलना में वॉन न्यूमैन का सबसे गहरा प्रश्न विश्वसनीयता का है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को सावधानी से नियंत्रित घटकों के साथ बनाया जाता था, फिर भी वे खराबी और त्रुटि से मुक्त नहीं थीं। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं कहीं अधिक संख्या में हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं परिवर्तनीय हो सकती है और जैविक ऊतक निरंतर बदलाव के अधीन रहता है। फिर मनुष्य अपेक्षाकृत स्थिर पहचान, निर्णय और व्यवहार कैसे दिखाता है? यह प्रश्न लेखक को गणना की उस समस्या तक ले जाता है, जिसमें अविश्वसनीय छोटे घटकों से भरोसेमंद बड़ा तंत्र बनाया जाता है। इसका संभावित उत्तर किसी एक पूर्ण घटक में नहीं, बल्कि पुनरावृत्ति, सामूहिक संकेतों और त्रुटियों को सीमित करने वाली व्यवस्था में निहित है। यदि कई इकाइयां एक ही प्रकार की सूचना का समर्थन करती है तो किसी एक इकाई की विफलता पूरे निष्कर्ष को नष्ट नहीं करती। यदि निर्णय किसी दहलीज या बहुमत जैसी प्रक्रिया से निकलता है तो छोटे उतार चढ़ाव दब सकते हैं। पुस्तक इस विचार को मस्तिष्क के लिए अंतिम सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं देती, बल्कि ऐसी वास्तुकला पर विचार करने का ढांचा देती है। इसका व्यावहारिक असर व्यापक है। आधुनिक वितरित प्रणालियां, त्रुटि सुधार विधियां और मजबूत मशीन लर्निंग सभी इस मूल तनाव से जूझते हैं। स्थानीय अनिश्चितता के बावजूद वैश्विक उपयोगिता कैसे कायम रहे? वॉन न्यूमैन की विशेषता यह है कि वे गलती को केवल विफलता नहीं, डिजाइन की केंद्रीय शर्त मानते हैं। चौथा, स्मृति, गति और जैविक पैमाने की भिन्नता। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि कंप्यूटर और मस्तिष्क की तुलना करते समय केवल क्षमता गिनना भ्रामक हो सकता है। किसी प्रणाली की उपयोगिता इस पर निर्भर करती है कि उसमें सूचना कहाँ रखी जाती है, उस तक पहुंचने में कितना समय लगता है, संकेत कितनी दूरी तय करते हैं और कितने कार्य एक साथ चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में गणना और स्मृति के अलग अलग भागों का संगठन अपेक्षाकृत स्पष्ट होता है। मस्तिष्क में स्मृति का स्थान और पुनर्प्राप्ति जैविक नेटवर्क के संगठन से जुड़ी जटिल प्रक्रिया है। वॉन न्यूमैन उपलब्ध ज्ञान की सीमाओं में रहते हुए इस अंतर को रेखांकित करते हैं। वे संकेत देते हैं कि तेज इलेक्ट्रॉनिक घटकों की तुलना सीधे जैविक तंत्रिका संकेतों की गति से करने पर गलत निष्कर्ष निकल सकता है। मस्तिष्क धीमी व्यक्तिगत इकाइयों के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में समांतर संपर्कों के माध्यम से प्रभावी हो सकता है। इसी तरह कंप्यूटर की क्रमबद्धता और मस्तिष्क की वितरित सक्रियता अलग प्रकार के लाभ देती है। यह विश्लेषण आज के पाठक के लिए एक सावधानी है। किसी AI प्रणाली की परीक्षा केवल उसके उत्तरों से नहीं, बल्कि उसकी स्मृति विधि, ऊर्जा लागत, डेटा प्रवाह, प्रशिक्षण और निर्णय वास्तुकला से भी होनी चाहिए। पुस्तक समकालीन मस्तिष्क विज्ञान का अंतिम विवरण नहीं देती, क्योंकि उस समय कोशिकीय और नेटवर्क स्तर का ज्ञान सीमित था। फिर भी यह सही पद्धति सिखाती है। पैमाना, गति, संगठन और भौतिक माध्यम को अलग अलग विश्लेषित किए बिना बुद्धि की तुलना विश्वसनीय नहीं हो सकती। अंत में मानवीय भाषा और मस्तिष्क की सांख्यिकीय भाषा का प्रश्न। वॉन न्यूमैन के लिए भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, सोच की प्रकृति को समझने की चुनौती भी है। मानव भाषा में अर्थ संदर्भ, अनुमान, अधूरे संकेत और अनुभव के सहारे बनता है। इसके लिए उस प्रकार की पूर्ण कठोर गणितीय औपचारिकता उपलब्ध नहीं होती जो किसी सरल गणना या तर्क नियम में दिखती है। इसी संदर्भ में पुस्तक मस्तिष्क की अपनी विशिष्ट सांख्यिकीय भाषा की संभावना पर विचार करती है। इसका आशय यह नहीं कि मस्तिष्क भीतर ही भीतर सामान्य मानवीय वाक्यों में हिसाब करता है, बल्कि मस्तिष्क सूचना को आवृत्तियों, संबंधों, पैटर्नों और संभावित प्रतिक्रियाओं के रूप में व्यवस्थित कर सकता है, जिनका ढांचा हमारी औपचारिक भाषाओं से अलग है। यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतीकात्मक तर्क की शक्ति को स्वीकार करते हुए उसकी सीमा भी बताता है। मनुष्य अस्पष्ट चेहरों को पहचान सकता है, अधूरे वाक्य का आशय पकड़ सकता है और अनिश्चित परिस्थिति में निर्णय ले सकता है। इन क्षमताओं में नियमों के साथ सांख्यिकीय नियमितताएं भी आवश्यक प्रतीत होती है। आधुनिक AI में संभाव्य मॉडल और पैटर्न आधारित सीखने की सफलता इस प्रश्न को नया महत्व देती है। हालांकि वे वॉन न्यूमैन के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। पुस्तक का स्थायी योगदान यह है कि वह भाषा, गणित और तंत्रिका प्रक्रिया के बीच अंतर को मिटाती नहीं। वह पूछती है कि मानव विचार को व्यक्त करने वाली भाषा और मस्तिष्क में उसे संभव बनाने वाली आंतरिक प्रक्रिया एक ही चीज क्यों मानी जाए। यह भेद आज भी संज्ञान और AI की व्याख्या में आवश्यक है। निष्कर्ष में द कंप्यूटर एंड द ब्रेन उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो AI, कंप्यूटर वास्तुकला, संज्ञान विज्ञान या तंत्रिका विज्ञान के इतिहास को केवल घटनाओं की सूची के रूप में नहीं, बल्कि मूल समस्याओं के विकास के रूप में समझना चाहते हैं। गणित या प्रोग्रामिंग का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है, हालांकि तकनीकी विचारों पर धैर्य रखने वाला पाठक इससे अधिक प्राप्त करेगा। यह पुस्तक आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान की मार्गदर्शिका नहीं है। तंत्रिका कोशिकाओं, स्मृति और मस्तिष्क क्षेत्रों के बारे में आज उपलब्ध ज्ञान इसके समय से बहुत आगे जा चुका है, इसलिए इसे वर्तमान वैज्ञानिक सहमति के विकल्प के रूप में पढ़ना उचित नहीं होगा। इसका व्यावहारिक और बौद्धिक लाभ अलग है। यह पाठक को प्रणालियों की तुलना करते समय संरचना, संकेत, त्रुटि, पैमाने और सांख्यिकीय व्यवहार जैसे प्रश्न पूछना सिखाती है। यही प्रश्न आज AI की क्षमताओं और सीमाओं पर विचार करते समय भी उपयोगी है। समान विषय की आधुनिक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर इसकी संक्षिप्तता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में है। अनेक नई किताबें विस्तृत शोध, एल्गोरिदम या समकालीन अनुप्रयोग देती है, वॉन न्यू मैम की पुस्तक उनसे पहले के स्तर पर जाकर पूछती है कि बुद्धिमान सूचना प्रसंस्करण को समझने के लिए सही वैचारिक इकाइयां क्या हो। लेखक स्वयं आधुनिक कंप्यूटर संरचना के निर्माण में केंद्रीय व्यक्ति थे, इसलिए मशीन के बारे में उनका दृष्टिकोण बाहरी टिप्पणी नहीं है, और मस्तिष्क के प्रति उनका संयम इसे तकनीकी आशावाद या जैविक सरलीकरण से बचाता है। इसी कारण यह छोटी अधूरी होते हुए भी विचारोत्तेजक क्लासिक बनी रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन फन नॉयमन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।